गीता अहिंसक पर वार नहीं कराती और हिंसक व्यक्ति से डरपोक नहीं बनने देती। जयराम जी की गीता कर्तव्य कर्म कराती है लेकिन कर्तव्य में कर्तापने की बेवकूफी हटवा देती। गीता अपने आत्म परमात्मा के साथ तालमेल करके संसार को नंदनवन बनाते अपने परमेश्वर पद को पाने की व्यवस्था कराने की प्रेरणा देती। आप गृहस्थी जीवन जीते हैं तभी भी गीता चाहिए, आप संन्यास का जीते तो गीता चाहिए, आप विद्यार्थिनियां हैं तो गीता का ज्ञान चाहिए। प्यार जब शरीर में आता है, प्यार जब शरीर को ही सुखद मानने लगता है तो काम बनता है, प्रेम जब धन में सुख ढूंढता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम जब परिवार में मंडारता है नेरो हो जाता है तो मोह बन जाता है, और प्रेम जब व्यापक होता है तो परमात्मा का आनंद ले आता है, परमात्मा को ले आता है।
गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते।
विचारों का कितना महत्व है। शबरी भीलन झोपड़े में रहती, खाने पीने की साधन सामग्री नहीं और भगवान आ जाएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी, लेकिन उसके पास मतंग ऋषि के विचार है। भगवान प्रेम के भूखे, वो बैर चुनने जाती है, बुढ़िया आंखों से दिखता नहीं कि लाल बैर कौन से और कच्चे कौन से। बैर चखती है, जो मीठा लगता है वो रखती है, अब मीठा वही लगेगा जो खाएगी तो झूठा तो हो गया। जो मीठे लगते वो रखती है और जो खट्टे होते फेंकती, और राम ने उसके झूठे बैर खाए। कृष्ण उन लोगों की छछीन भरी छाछ पर नाचे जिनके विचार शुद्ध थे, प्रेम भरे थे, और कृष्ण ने 56 भोग दुर्योधन के ठुकरा दिए। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। जब उस शुद्ध प्रेम को शरीर में मंडारते हैं और सेक्सुअल नजर से देखते हैं तो वही हमारे प्रेम भरे ऊंचे विचार नीचता के तरफ, नीचे केंद्र के तरफ आ जाते, काम बन जाते। अगर काम में रुकावट पड़ती तो क्रोध बन जाता है, और कामना तृप्ति में जरा मजा आता है तो लोभ बन जाता है। लेकिन वह विचार हमारा प्रेम जब शरीर में एक दूसरे के शरीर में मंडारता है तो पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, फिर झगड़े के दिन बहुत नजीक आ जाते हैं। जितना जवानी में एक दूसरे के शरीर के प्रति प्रेम है उतना ही बुढ़ापे में बूढ़े बूढ़ी होकर लड़ेंगे झगड़ेंगे। पाश्चात्य जगत की यह दुर्दशा हो रही है, प्यार शरीर में मंडार रहा है सेक्स की तरफ। 100 शादियों में 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं बेचारे। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 10 सेकंड में सेंधमारी होती है, हर 16 सेकंड में कार चोरी हो जाती है। 20 लाख कन्याएं मेरे पास शब्द बोल नहीं है, मैं क्या बोलूं। 20 लाख कन्याओं का यौवन प्राप्त होने के पहले ही उनकी इज्जत लूट ली जाती। 20 लाख प्यार जब शरीर में आता है, प्यार जब शरीर को ही सुखद मानने लगता है तो काम बनता है, प्रेम जब धन में सुख ढूंढता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम जब परिवार में मंडारता है नेरो हो जाता है तो मोह बन जाता है, और प्रेम जब व्यापक होता है तो परमात्मा का आनंद ले आता है, परमात्मा को ले आता है। प्रेम किए बिना कोई नहीं रह सकता है। लोग बोलते फलाना नास्तिक है, लेकिन मैं इस बात पर राजी ही नहीं होता हूं कभी। मेरी नजर में कोई नास्तिक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कृष्ण को मानता है वही आस्तिक है, मेरा ऐसा आग्रह नहीं। राम को कृष्ण को शिव को माने वो आस्तिक है, दूसरे नास्तिक है, मैं इस बात पे राजी नहीं। ग्रंथ साहब को मानता है वो भी आस्तिक है, और ग्रंथ साहब को रामायण को और अल्लाह को खुदा को नहीं मानता वो भी मेरी नजर में आस्तिक है, क्योंकि वो किसी न किसी को मानता है। बोले बाबा ये किसी को नहीं मानता तो बड़े नास्तिक को तो मानता है, ये हमारी पार्टी है उसकी पार्टी, मैं अपक्ष हूं। अपक्ष भी एक पक्ष है, जयराम जी की अपक्ष भी एक पक्ष है, हमारी कोई पार्टी नहीं, जिसकी कोई पार्टी नहीं है वो स्वतंत्र, स्वतंत्र भी एक पार्टी हो गई। जो किसी को नहीं मानता वो कम से कम अपने मैं को तो मानता है, मैं हूं। उसकी गहराई देखो तो वही परमात्मा की सत्ता से ही आती है, इसलिए वो सुख तो चाहता है। नास्तिक भी सुख चाहता है, नास्तिक भी आनंद चाहता है, नास्तिक भी माधुर्य चाहता है। सुख आनंद और माधुर्य उस परमेश्वर का स्वभाव है, वो चाहे परमेश्वर के नाम को और उसके ग्रंथ को नहीं, लेकिन परमेश्वर की हस्ती को तो वो भी चाहता है, मानता है। हाँ, जो आस्था करके मानते वो सीधे से सीधा रास्ता ले लेते हैं, और जो नहीं मानता वो हजार हजार थप्पड़ खाने के बाद अपने रास्ते पे आ जाता है। आस्तिक एक को मानता है और नास्तिक हजारों को मानता है। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे डिस्को तू सुख दे, हे चिकन पार्टी तू सुख दे, हे लवर लवरी चेंजिंग तू सुख दे। सुख के लिए वो बेचारा भटकता है, वो भटकते 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 वहां से जब दुख मिलता है, थप्पड़ लगती, तो फिर वो आस्तिक हो जाता है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। जो लोग दुख से डरते हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप दुख से न डरिए, कृपा करिए, दुख से न डरिए, दुख से न घबराइए। जितना आप डरते घबराते उतना ही वो ज्यादा आपको दुख देगा। मैं कई बार सुबह शाम घूमने जाता हूं ना, तो खेतों में या किसी जगह पर कुत्ता मुझे देखता है ना तो हॉर्न बजाता है, बैंड बजाता है। और मेरा विनोदी स्वभाव है, कभी कभार कुत्ते के सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ, आंख दिखाता हूँ, तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जाती है। और कभी कभार जानबूझ के कुत्ता भौंका, जरा सा भौंका ना भौंका, और मैं दौड़ने लगता हूँ विपरीत दिशा में, तो कुत्ते की हिम्मत बढ़ जाती है। वो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है, मिसिस कुत्ता भी मेरा पीछा करती है, और बेबी बॉयज कुत्ता भी मेरा पीछा करते हैं, उसके पिल्लर भी मेरा पीछा करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, आप आजमा के देखो, आपसे भी वही हाल होगा। मैं उनके पीछा करने को देखकर इस नतीजे पे आया हूं कि दुख और विघ्न और प्रॉब्लम भी कुत्ते जैसे, आप इनसे डरते हैं, झिझकते हैं तो वे आपके यहां सब परिवार डेरा डालने को भागते हैं, और आप हिम्मत करते हैं और उस सच्चे सहारे के साथ कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो दुख विघ्न बाधा और प्रॉब्लम आपके छू होने लगते। ऐसे अर्जुन को भी गीता के विचारों के बिना किम कर्तव्य मूढ़ता ने पकड़ रखा था, घेर रखा था। इसी गीता माता ने अर्जुन को सशक्त बना दिया, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से निहारे। गीता अहिंसक पर वार नहीं कराती और हिंसक व्यक्ति से डरपोक नहीं बनने देती, जयराम जी की। गीता कर्तव्य कर्म कराती है, लेकिन कर्तव्य में कर्तापने की बेवकूफी हटवा देती है। गीता अपने आत्म परमात्मा के साथ तालमेल करके संसार को नंदनवन बनाते, अपने परमेश्वर पद को पाने की व्यवस्था कराने की प्रेरणा देती। आप गृहस्थी जीवन जीते हैं तभी भी गीता चाहिए, आप संन्यास का जीते तो गीता चाहिए, आप विद्यार्थिनियां हैं तो गीता का ज्ञान चाहिए। मिस्टर आइंस्टीन के बाद का एक वरिष्ठ विज्ञानी, जिसका भारत गवर्नमेंट ने सम्मान किया था, वो विज्ञानी आया भारत में। उस विज्ञानी ने कहा मुझे एक संस्कृत के पंडित के पास ले चलिए। संस्कृत के पंडित के पास भारत सरकार ने उनको व्यवस्था करके पहुंचाया। संस्कृत का पंडित पूछता कि तुम इतने प्रसिद्ध विज्ञानी, और मुझे जैसे अकिंचन संस्कृत के पंडित से मिलने की आपकी इच्छा कैसे हुई? बोले 1942 का युद्ध चल रहा था, उस समय एक भारत की लड़की मेरी असिस्टेंट थी, क्लारक का काम करती थी बेचारी। मैंने उसे कहा कि चलो हम भाग चले, बम चल रहे हैं तो हम अंडरग्राउंड हो जाए। तो उस कन्या ने मुझे एक रोशनी दे दी, वो हंस पड़ी मेरी इस कायरता पर। उस भारत की कन्या ने मुझे कहा कि बम तो जहां गिर रहे आप अभी इधर क्यों डरते? तो मैंने कहा तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं, क्यों नहीं डरती? बोले जब मौत आनी होगी आएगी, और डर के भागते रहेंगे तो क्या मौत छोड़ देगी क्या? मैं गीता पढ़ती हूँ, मेरी मौत कभी नहीं होती ऐसा मैं जानती हूँ। मौत होती तब शरीर की होती, हम मुझ आत्मा की नहीं होती है। मैंने कहा वो गीता क्या है? उसने बताया गीता, और मैंने वो गीता का थोड़ा सा ज्ञान पढ़ा, मैं दंग रह गया। अब मैं उस पंडित से इसलिए आया हूँ मिलने कि मैं और संस्कृत सीखूं और गीता को समझूं। गीता मर शरीर में भी अमरता का अमृत चखाने वाली है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? वो भारत के भूतपूर्व राज्यपाल गुजरात के श्रीमन नारायण जमनादास बजाज की जमाई। आइंस्टीन उनका हाथ पकड़ के अपने एक शांत कमरे में ले गया, बताया कि मेरा आसन है विद्युत का कुचालक अनकंडक्ट, मैं भारतीय सिस्टम से ध्यान करता हूं। और मेरी सोई हुई जीवनी शक्ति तीसरे केंद्र को विकसित मैंने किया है। पिछले 4 साल से मैं अपनी पत्नी से दूर से मिला जुला हूं, लेकिन शारीरिक विकारी सुख भोगने की मेरी बेवकूफी शांत कर रखी मैंने। हम पत्नी की उन्नति चाहते हैं और पत्नी हमारी चाहे, उन्नति का मतलब और होता है और एक दूसरे से मजा नोचने का मतलब और होता है। हम 4 साल से एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन कमरे में एक दूसरे के साथ रात नहीं बिताते। मैंने संयम का महत्व जाना है, और उसी संयम शक्ति को योग के द्वारा मैंने और ठीक जगह से लगाई, इसलिए मेरे ये केंद्र सुषुप्त केंद्र जो प्रकृति के रहस्य को बताते हैं, वो भारतीय सिस्टम से मैं योग करता हूँ, इसीलिए मैं इतना प्रसिद्ध। आइंस्टीन से दोबारा किसी ने और पूछा कि तुम्हारे इतने सारे आविष्कार, साइंस की इतनी सारी सुविधाएं जगत को मिल रही, फिर भी संसार दुखी क्यों है? उस मनीषी ने कहा कि आदमी को सुविधाएं तो विज्ञान ने दी, लेकिन एक बड़ी गलती हम लोगों ने की कि मनुष्य बनाने के रास्ते पर कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। मनुष्य बनाने का प्रयत्न हम भूल गए। मनुष्य उसी ऊंचे विचारों से बनता है, ऊंचे विचार देने का प्रयत्न भूल गए। और ऊंचे विचार वही लोग देते हैं जिनका अधिकार ही नहीं ऊंचे विचारों का। जो शराबी है वो बोले शराब पीना बहुत बुरा है मत पियो, और मैं पीता रहूं तो उसका क्या माना? पिक्चर मत देखियो, और मैं अभी पिक्चर देख के आया हूं और फिर कल जाऊंगा, तो तुम्हारे पर क्या असर पड़ेगी? संत और महात्माओं की वाणी का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और हम दिन रात प्रभाव डालने के लिए मर मिट रहे, हमारा प्रभाव नहीं रहता। पंडितों ने घेर लिया कबीर को कि हे संत कबीर, ये हमको समझ में नहीं आता कि हम शास्त्रों को चाट गए हैं। चाट साम वेद की, छांदोग्य उपनिषद का ये पलहना मंत्र है, ईशावास्य मिदम सर्वम, ये अथर्वेद की 39वें अध्याय का, ईशावास्य उपनिषद का ये पहला श्लोक है, फलाना फलाना मंडल, फलाना ब्राह्मण, फलानी ऋचा, फलानी जगह लिखी, हम ऐसा बताते कथा में, फिर भी हमारे कथा में सुनने वाले को पूर्ण शांति नहीं, दस आते हैं तो पांच उठते हैं, पांच उठते हैं तो सात आते हैं, कभी सात आते तो बारह उठते हैं। उठ बैठ चल रही है, लेकिन आपके सत्संग में जो आते हैं मानो फेविकोल लेकर चिपक जाते हैं, ये क्या कारण है? और हजारों के हजारों लोग बैठे रहते हैं आपके पास, ये क्या कारण है? कबीर ने कहा पंडितों बुरा मत मानियो। आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए शब्द छटा फेंकते हो। और एक पंडित एक साधु बोल के गया, दूसरा साधु उसकी क्रिटिसाइज करके अपना अहम थोपने की कोशिश करेगा, दूसरा लेक्चर करके गया तो तीसरे ने फिर अपनी डिम डिम हाकी। जैसे बाजार में कॉम्पिटिटर अपने अपने माल की सराहना करते हैं और कैसे भी ग्राहक उल्लू बन जाए और हमारा काम हो जाए, तुम लोग ऐसे माइंड से करते हो इसलिए तुम्हारी असर नहीं है। और हम सब में एक एक में सब ऐसा अनुभव करके सबकी भलाई के लिए बोलते हैं, इसलिए सब हमको प्रेम करते हैं, सब हमको आदर से सुनते हैं। तो आप अगर किसी पर प्रभाव छोड़ना भी चाहते हैं तो एक सुंदर तरीका है, आपका स्थायी प्रभाव रहेगा कि आप जब भी किसी से मिले बोले तो उसके अंदर मेरा नारायण है, उसका मंगल ही मेरा मंगल है। ऐसा सोचकर आप कोशिश करो, आपके विचार उन्नत होंगे, आपके मंगल के साथ उसका मंगल, उसके मंगल के साथ आपका मंगल। कई लोग मेरे से पूछते, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते कि बापूजी के हाथ में जो अंगूठी है ना, ये इस नंग का चमत्कार है कि बापू आज विश्व में पहले नंबर से चमक रहे धर्म जगत। ये अंगूठी तो अभी मेरे को किसी ने प्रेम से पहराई 6-8 महीने पहले जयराम जी के। और इस पत्थर का ऐसा प्रभाव है कि हजारों लाखों लोग इसके पीछे घूमते हैं। ये ले लो भाई तुमसे। कुछ लोग सोचते कि बापू के पास ये चीज है इसीलिए लोग आकर्षित होते। मैं बोलता हूँ आपके अनुमान नहीं है सही, मैं अपने हृदय की बात करता हूं, मेरे पास वशीकरण मंत्र है जयराम जी की। जो भी मेरे सामने आए मेरे पास आए मैं उसको वश कर लेता हूं, मेरे पास मंत्र है। और वो छुपा छुपाया नहीं है, मैं तुम्हें भी बता सकता हूं, अगर तैयारी हो तो मैं अभी बता सकता हूं, 125 रुपया लूंगा दक्षिणा। लेकिन वो सचमुच नहीं, मन से ही दे देना, आपके जेब में हाथ रख के 125 रुपया मेरे नाम का कर देना, फिर आप ही प्रसाद बांटना। बोलो तो मैं बता दूं, वशीकरण मंत्र है मेरे पास, बता दूं। वशीकरण मंत्र प्रेम को लो, वशीकरण मंत्र प्रेम को। मेरे हृदय में मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, और वो प्रेम पैदा करने वाला गीता का ज्ञान है, मेरे गुरुदेव का ज्ञान। तुम जिससे मिलते हो जिससे बोलते हो वो कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, लेथ मशीन या रोबोट नहीं है, वो मनुष्य है। उसे सांत्वना की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है, उसे सच्चाई की भूख है। आप अगर उसे सच्चाई से व्यवहार करते हैं तो उसकी भूख मिटती है, आप प्रेम से व्यवहार करते हैं उसकी भूख मिटती है, आप सहानुभूति से व्यवहार करते हैं तो उसकी भूख मिटती है, उसकी भूख मिटती है तो वो आपकी भूख मिटाने के लिए चक्कर काटेगा। बाबा जी कोई तकलीफ तो नहीं, मेरा फार्म हाउस पवित्र करो। जयराम जी की, और बाबा जी ये फार्म हाउस ताटा है, बाबा जी को तो पैरे पड़ने का मौका जब मिले तब बाबा जी के चेलों को हाथ जोड़ेगा सरदार, सरदार तो हाथ जोड़ता है, सरदार के बाप भी हाथ जोड़ रहे हैं, दोनों सरदार हाथ जोड़ रहे हैं, बेटा भी हाथ जोड़ रहा है, उसका बाप भी हाथ जोड़ रहा है, वो बैठे उठे अभी भी जोड़ रहे हैं बेचारे। ये कोई साधारण आदमी तो है नहीं कि चलो भाई इनको जरा सा कोई मस्का पॉलिश करे और इनकी फार्म हाउस का मालिक बन के बैठ जाए, ऐसे आदमी नहीं है। ये तो प्रिंसिपल रह चुके हैं, लोगों को पढ़ाने वाले, ऑफिसर तैयार करने वाले व्यक्ति, वो इतने यूं कर देसी क्यों? ये मेरा प्रेम दा जादू लग रहा है। जयराम जी के भाग्य होया गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। मैं आज एक ऐसे विषय पर बोल रहा हूं जिसकी कैसेट लोग मांगेंगे, करनाल वाली कैसेट दो, करनाल वाली कैसेट दो, ऐसी बात पर बता रहा हूं। विश्व भर में 78 देशों में अपने मैगजीन जाती, तो फिर कैसेट भी वहां पहुंचती है देर सवेर, करनाल वाली कैसेट। गृहस्थी का जीवन हम आप लोग जो जी रहे हैं उसको आप गीता के मुताबिक कर दीजिए। देखिए मजा, देखिए जादू। आप जहां जी रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, हम आपसे आपका काम धंधा बदलने को नहीं कहते, छोड़ने को नहीं कहते, केवल आपको थोड़ी सी गीता की एक टेक्निक देते बस। देखो फिर आपका गृहस्थी जीवन, देखो आपका विद्यार्थी जीवन, देखो आपका शिक्षक का जीवन। आप जहां हो वहीं से आप महकिए। गुलाब अपनी जगह पर महके तो मोती और मोगरा अपनी जगह पर महके, उसकी भी महक है। एक आदमी है, वो काम धंधा करता है, सुबह जाते हैं, दिन भर नौकरी धंधा करते, औरत को पालना पड़ता है, बच्चों को पालते हैं, विधवा बहन वो भी घर में खून चूसने को भगवान ने उसको भी रख दी, क्या करें, मजूरी कर रहे हैं। गृहस्थी की गाड़ी घसीटता है लेकिन मजूर की नहीं घसीटता है, लाचार मोहताज दुखी और फरियाद करता हुआ घसीटता है। आपके मन में जैसे विचार होते दूसरों के लिए, तो दूसरों के प्रति दूसरे के दिल में भी आपके लिए ऐसे ही एक्शन और विचार उत्पन्न हो ही जाते। आप अगर पत्नी को, बहन को या किसी को ही जिम्मेदारी समझकर पाले पड़े हैं, उछना पड़ता है, क्या करें, बेटों की जिम्मेदारी जख मारते, क्या करें। आपके लिए आपका गृहस्थी जीवन नरक हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, आपको साथ सहयोग अनुदान और प्रोत्साहन मिलता होगा तो कम हो जाएगा। दूसरा वो व्यक्ति है कि पुत्र के रूप में मेरे घर परमात्मा ने जन्म लिया है, पुत्री के रूप में, बहन बिचारी गंगा स्वरूपिणी है, मैं शुक्र करूं कि वो मेरे दर पे अपना भाग्य खाती है, रब ने क्या मौका दिया है बहन की सेवा का। मरने वाला शरीर है, उससे परिश्रम हो जाता है, अच्छा है, आलस से दूर रहेगा, और तत्परता से काम करूंगा, मेरी योग्यताएं विकसित होगी। आप अपना काम तत्परता से करते हैं, आप सिपाही हैं, जवान हैं तो तत्परता से काम करिए, आप पीएसआई और थानेदार हैं तो तत्परता से काम करिए, आप बॉर्डर पर जी रहे हैं तो तत्परता से काम करिए कि देशवासियों ने जिन नेताओं पर, ऑफिसरों पर विश्वास रखा, उन नेताओं और ऑफिसरों ने हमें हम पर विश्वास रखकर सीमाओं की सुरक्षा दी है, मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। हे हरि, आप अपनी अपनी जगह पर तत्परता से कर्तव्य निभाएंगे, कर्तव्य निभाने का आनंद और ऊंचे विचार के ये देश की सेवा हरि की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आपका हृदय प्रसन्न होगा। आपको पगार तो जो रो रो कर ले रहा है उसको भी पगार मिलेगा, और हंस हंस कर ले रहे हैं उसको भी पगार मिलेगा, लेकिन पगार के साथ देर सवेर आपका प्रमोशन और अनुदान भी मिलते जाएंगे बाहर से और भीतर से, और उसको फटकार और धिक्कार भी मिलता जाएगा बाहर से भीतर से। अब दूसरा आदमी है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, गृहस्थी जीवन जीने का, आपने लड़की पैदा की, लड़का पैदा किया, भोग का स्वाद लिया, तो उसकी जिम्मेदारी ईश्वर ने पैदा की, चलो यहां पूरी निभा रहे हैं। बहन आई, वो बिचारी परिश्रम तो कर ही रहे, रोटी का टुकड़ा खाती, और सब अपना अपना भाग्य खाते हैं, ईश्वर ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो आपका कर्म ईश्वर की भक्ति हो जाएगा। आप रोते चीखते सिर कूटते हैं तो आपका कर्म आपके लिए बंधन हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगा, काले पानी की सजा हो जाएगा आपका कर्म, और आप दृष्टिकोण बदल कर कर्म करते तो आपके लिए वो कर्म आपकी पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। पुत्र बड़ा हो और बहू लाए और मुझे सुख देगा तो आप बंध गए, आपके लिए कर्म बंधन हो गया। पुत्री बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, मुझे हेल्प करेगी, जमाई आएगा, मैं घर घर जमाई बनाऊंगा, मेरा अपना नाम करूंगा, आप फंस गए। कर्म बंधन में फंस गए आप। नहीं, पुत्र को जन्म दिया, ईश्वर की सृष्टि में हम निमित्त बने, हमको किसी ने जन्म दिया, हमने दिया, अपने कर्जे से छुट्टे। ठीक है, जो तिद भावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा पाणा मीठा लागे। पुत्र बदमाशी से, बेवकूफी से, किसी कारण से मेरे को दुख दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो इसमें तेरी कृपा है कि मैं पुत्र के मुंह में न पड़ूं, इसलिए तू करवा रहा है, तेरी कृपा है। और पुत्र सेवा कर रहा है, अनुकूल हो रहा है, तो तू मुझे रिटायर होकर भजन करने के लिए अवसर दे रहा है, ये भी तेरी कृपा है। दोनों में कृपा उसकी देख, तू बंधन से छूट जाएगा। जिन्होंने उसकी कृपा को देखा वे सुखी रहे, और जिन्होंने अपने अहम और वासना को देखा वे दुखी रहे, अशांत रहे। वो अहम वाला साधु कहता है कि भगवान का बच्चा तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर होता तो कम से कम हमारी छत उड़ने से बचाता, हम तेरा भजन क्यों करेंगे। और दूसरा साधु कहता है कि भगवान ये तेरा अस्तित्व है, तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, तूने जरूर तूफान का रुख बदला होगा, नहीं तो इन कवेलों की ताकत है कि दूसरे पड़े रहे, जैसे आधे छत के गिरे तो दूसरे भी गिर सकते थे, अब तो तूने रहमत की। बंद कमरे में भरे रहते थे, अब छत का कुछ हिस्सा उड़ाया, हमें आकाश, खुला आकाश देखेगा, अपनी मति और गति व्याप्त होगी, तेरे भागते हुए बादल देखेंगे, चिमचिमाती बिजली देखेंगे, टिमटिमाते तारे देखेंगे, और तेरी तारों में टिमटिमाहट और तेरी बिजली में चमक और तेरी बादलों में गर्जना को याद करके अंतर आत्मा की गर्जना भी जगाएंगे, तू कितना दयालु है। हमने तो मोह माया से कवेलू खूब लगाए थे, लेकिन तू थोड़े उखाड़ कर ये संसार उखड़ने वाला ये ज्ञान हमें दे रहा है, रब तेरी रहमत। तूने दुश्मन देकर, विरोध और प्रॉब्लम देकर हमें ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि जहां सत्संग मिल रहा, ये तेरी रहमत नहीं तो और क्या है। नहीं तो दूसरा तरीका है कि हाय रे हाय, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, और उन्होंने मेरे साथ अखबार वालों ने ब्लैकमेल किया मेरे साथ। अरे एक अखबार वाले ने एक व्यक्ति से ब्लैकमेल किया क्या, वो तो कईयों से करते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं से भी कर सकते हैं, वो तो है अपनी जगह पे, जो करते हैं करते, नहीं करते वो नहीं करते। संसार है तो भाई, अपना मन भी तो अपने साथ ब्लैकमेल करता है, कई बार होता तो कुछ भी नहीं हो, मन बोलता कि बहुत मजा आएगा, ये ब्लैकमेल नहीं है क्या, होता तो पान मसाला है, सड़ी गड़ी सोपाली, तंबाकू निकोटिन और चिपकली का पाउडर, पूंछ वाली वो जो मच्छर खाती चिपकली उसका पाउडर, और मन कहता है यार खा लो पान मसाला, ये धोखा नहीं है, ये ब्लैकमेल नहीं है। दो दिन पांच दिन पत्नी के साथ संसारी विकारी सेक्स ही सुख लिया, सुख लेने के बाद लगा कि सुख तो क्षण भर है, लेकिन अब 8 दिन खाएंगे तब वो खड्डा भरेगा एनर्जी का, कोई सार नहीं। उस समय बेटा बोलता है कोई सार नहीं, फिर 10-5 दिन के बाद बोलता है ओ ब्लैकमेल तो करता है मन, उसको क्यों नहीं डांटते, उसका ब्लैकमेल क्यों नहीं देखते। देखने की निगाह अगर अच्छी आ जाए तो महाराज सुख में तो विवेक सोता है, विकार जगते हैं, और दुख में विकार दबते हैं और विवेक जगता है। सुख में भोगवासना बढ़ जाती है और दुख में सावधानी आ जाती है। जीवन के लिए जितना सुख जरूरी है उतना दुख भी जरूरी है, और जितना सुख दुख जरूरी है उतना उनसे सावधान होकर पल्ला छुड़ाना भी जरूरी है, और ये पल्ला छुड़ाने की तरकीब का नाम है गीता का ज्ञान।